قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ ایمان کن خطروں میں ہے اور ان خطروں سے ایمان کا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ پہلے ہم سیکھیں گے ایمان کو درپیش خطرات کے بارے میں، ڈینجرز ٹو دا فیتھ۔ بائبل مقدس یہ بار بار واضح کرتی ہے کہ ایمان ایک ہی بار لایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے بگڑ جانے کے، اس کے تباہ اور برباد ہو جانے کے بھی چانسز موجود ہیں، اور ایمان کو کئی طرح سے خطرات درپیش ہیں۔ خطروں میں سب سے بڑا خطرہ ابلیس یا شیطان سے ہے، جو خدا کا دشمن ہے، جو تمام انسانوں کا دشمن ہے، خدا کے منصوبوں اور ارادوں کا دشمن ہے، خدا کی مرضی کا دشمن، خدا کے جلال کا دشمن ہے۔ ابلیس کو کوئی ایسی چیز پسند نہیں آتی کہ جس سے خدا کی شان ظاہر ہو، یا خدا پر لوگوں کا ایمان پیدا ہو، یا ایمان میں لوگ ترقی کریں۔ اس لیے ابلیس کوشش کرتا ہے کہ پہلے تو ایمان لانے سے روکے، اور اگر کوئی ایمان لے آئے تو پھر اس کا ایمان چرا لے، تباہ کر دے، برباد کر دے، خراب کر دے، پولیوٹڈ کر دے، کرپٹ کر دے، ڈیمیج اور ڈسٹروائے کر دے۔ لوکا کی انجیل کا 8 باب اور اس کی 12 آیت، بیج خدا کا کلام ہے، راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ کلام ہی چرا کے لے جانا چاہتا ہے، یہ ایمان کا بڑا دشمن ہے۔ ہم کلام سن لیتے ہیں، ابھی وہ تیاری پکڑ رہا ہے کہ ہمارے اندر ایمان میں ڈھل جائے، ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، لیکن ابلیس اسے چرا کے لے جاتا، اچک کے لے جاتا ہے تاکہ ہم ایمان نہ لائیں اور نجات سے دور رہیں۔ پھر غلط تعلیم ایمان سے گمراہ کر دیتی ہے۔ ابلیس استعمال کرتا ہے انسانوں کو کہ وہ تعلیم میں بگاڑ لے آئیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا کلام سے، مسیح کے کلام سے، وہ کلام جو یسوع مسیح کی بابت ہے، وہ کلام جو یسوع کے منہ سے نکلا ہے، وہ کلام جس میں یسوع کی خوشخبری شامل ہے، وہ کلام جو یسوع مسیح میں نجات کا بھید بتاتا ہے۔ ابلیس کی کوشش ہے کہ وہ اس تعلیم میں، اس خوشخبری میں، اس گاسپل میسج میں، اس گڈ نیوز میں ملاوٹ کرے، بگاڑ لے کے آئے، غلط تعلیم، فالس ٹیچنگز شامل کر دے، اور پھر لوگ ایمان گما بیٹھتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ پولوس رسول نے تیموتھیوس کو، جو پولوس رسول کا شاگرد ہے اور کلیسیاؤں پہ پاسبان مقرر ہوا ہے، اسے خط لکھتے ہوئے پہلے خط میں باب نمبر 6:20 اور 21 آیات، اس میں لکھتے ہیں، تیموتھیوس اس امانت کو حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بیہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر، بعض اس کا اقرار کر کے ایمان سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ غلط تعلیم کی طرف توجہ کرتے رہنا، اسے سنتے رہنا، اسی پہ بحث کرتے رہنا، اسی میں انوالو رہنا بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ اس میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ غلط باتیں سن سن کے، کہہ کہہ کے ہم اتنا پکا لیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ پھر اصل ایمان سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے خط میں 2:18 میں پولس رسول پھر لکھتے ہیں، وہ یہ کہہ کر کے قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں، یعنی بائبل کے پیغام میں، انجیل کی خوشخبری میں غلط تعلیم شامل کر کے وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور لوگ قبول کر رہے ہیں، اور ایمان لوگوں کا بگڑ رہا ہے۔ سو ہمیں خطرہ ابلیس سے ہے، ہمیں خطرہ جھوٹی غلط تعلیم سے ہے۔ اور جب غلط تعلیم کی بات کرتے ہیں تو پھر غلط لوگ ہی تعلیم پھیلاتے ہیں، اس لیے دھیان رکھنا چاہیے۔ پھر گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم ایمان سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ جو دوسرا نقطہ بیان کیا، ایسی غلط تعلیم ہے جو کلام خدا کے کلام میں بگاڑ لا کے پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ تعلیم وہ ہے جو صریحاً اور روحوں کے بارے میں ہے، شیاطین کے بارے میں ہے، جو خدا اس کے کلام سے ہٹا کے کسی اور طرف دھیان لگا دیتی ہے کہ یہاں سے آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، آپ کی ضرورتیں یہاں سے پوری ہوں گی، آپ یہاں ماتھا ٹیک دو، آپ یہاں اتنا کچھ چڑھا دو، آپ یہاں یہ نظر کر دو، آپ یہاں یہ کام کر دو تو آپ کا کام بن جائے گا۔ خدا سے اور کلام سے ہٹا کے اور روحوں کی طرف، شیاطین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ سو اس سے خطرہ ہے ہمیں، یہ جادوئی تعلیم ہے، یہ شیطانی تعلیم ہے، یہ دوسری بری ارواح کی تعلیم ہے، اور آزمائشیں ہمیں ایمان سے گمراہ کر دیتی ہیں۔ لوکا ہی کا انجیل بیان ہے، 8:13، کچھ بیج ہیں جو چٹان پہ گر جاتے ہیں، ویسے ہیں جو کلام کو سن کر خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ کلام سنا، قبول کیا، ایمان رکھا، ایمان لے آئے، لیکن آزمائش آئی، پھر گئے۔ یہ آزمائشیں بدنی ضرورت کی، مالی ضرورت کی، عہدے مرتبے کی، خدا کے ساتھ جڑے معاملات میں بھی آزمائش آتی ہے کہ دیکھو تمہارا خدا اگر اس قابل ہو تو تمہیں بچا لے۔ ہماری آزمائش جان کا خطرہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہیں مار دیں گے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس کے 11 میں، کہ آزمائے گئے مارے جانے سے، کاٹے جانے سے، آروں سے چیرے گئے، انہیں سولیوں پر چڑھایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، تیل میں ڈالا گیا، کھالوں میں سیا گیا، درندوں کے سامنے ڈالا گیا، ان کے ایمان کی آزمائش کی گئی۔ سو آزمائشیں بھی ایمان کے لیے خطرہ ہیں، بری نیت ایمان تباہ کر دیتی ہے۔ پولوس رسول نے تیموتھیوس کو پہلے خط کی 18:19 میں واضح طور پہ لکھا کہ نیت بری ہونے سے لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ سب سے بڑا خطرہ ہمیں اپنی نیت سے ہے۔ خدمت میں کوئی بھی پہلو ہے، چاہے آپ کلام کی خدمت کریں، دعا کی خدمت کریں، یا آپ چرچ میں کسی اور مینجمنٹ میں خدمت کریں، یا دنیا میں سوسائٹی میں خدمت کریں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی کام کریں، لیکن اس میں نیت غلط ہو جائے، انٹینشن غلط ہو جائے، تو وہ ایمان تباہ کر دیتی ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایمان برباد ہے۔ ہم اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری نیت غلط ہے۔ ہم کچھ بھی کریں، نیت غلط کر لیں تو ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ جب میری اپنی نیت خراب ہو گئی ہے تو پھر کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے میرے ایمان کی بربادی کا، وہ میں خود ذمہ دار ہوں۔ زر کی دوستی، دولت کی خواہش ایمان سے گمراہ کر دیتی ہے۔ ہر ایک کی ضرورت ہے دولت، ہر ایک کی ضرورت ہے پیسہ۔ آج دنیا میں سارے کام پیسے سے ہوتے ہیں، خوراک کھانے سے لے کر گھر آباد کرنے تک، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اگر آپ خالی ہاتھ ہیں، خالی جیب ہیں، تو آپ کا کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ پیسہ ہے آپ کے پاس تو لوگ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آپ کے کام بھی آئیں گے، آپ سے میل جول بھی رکھیں گے، اور آپ کے کام ہو بھی جائیں گے، آپ کوئی چیز بھی چاہو گے آپ کو مل جائے گی اگر آپ کے پاس پیسہ ہے۔ یہ ضرورت بن گئی ہے، لیکن دولت کی خواہش رکھنا یا زر کی دوستی اپنا لینا، اس میں فرق ہے۔ روپیہ پیسہ ضرورت کے لیے کمایا جائے، استعمال کیا جائے، یہ ایک پہلو ہے، لیکن हवस में मुबतला हो जाना कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए और दूसरों के हक छीन कर भी अपनी हवस पूरी करना, जुल्म करके हवस पूरी करना और किसी जरूरतमंद की मदद ना करना, जब यह लेवल आ जाता है हम पे, तो फिर हमारे अंदर जर की दोस्ती आ जाती है, हमारे अंदर दौलत की हवस और लालच आ जाता है, जो हर तरह की बुराई की जड़ है। तो इससे ईमान बर्बाद हो जाता है। जरूरतों की तकमील के लिए रुपया पैसा कमाना और पास रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास जुल्म से कमाया हुआ पैसा, किसी से ठगा हुआ, किसी का हक मार के इकट्ठा किया हुआ पैसा है या दौलत या जायदाद है, और हम अपने पास मौजूद वसाइल, रिसोर्सेज, रिचेज, वेल्थ, रुपया पैसा किसी की जरूरतमंद की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, यह सोचकर उसे अपने पास ही रखते हैं कि यह मेरा है, मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है और मैं इसे संभाल के रखूंगा, यह हवस में और जरदोस्ती में आ जाता है, यह खुदा को पसंद नहीं। बाइबल मुकद्दस इसे पसंद नहीं करती, इसे रद्द करती है बाइबल। मुझे लिखा है कि ऐसी दोस्ती जर की हर किस्म की बुराई की जड़ है। फिर लोग दूसरों से जुल्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखे देते हैं, रिश्ते भी बिगाड़ लेते और तोड़ देते हैं और ईमान खत्म हो जाता है। सो ये खतरा है हमारे लिए, अगर हम दौलत के पुजारी हैं, दौलत की हवस रखते हैं, जर दोस्त हैं, वी हैव लव ऑफ मनी, देन आवर फेथ इज इन डेंजर। नफसानी ख्वाहिशें ईमान से हटा देती हैं। जिस्मानी ख्वाहिश, ये जिंसी भी हो सकती है या हमारे बदन की दूसरी आम जरूरतें भी हो सकती हैं जो बिल्कुल फितरी हैं, ये भी हमें ईमान से गुमराह कर देती हैं। कई वाकयात सुने होंगे कि जब लोग ब्याह करने के लिए किसी इंसान से अपना जिस्मानी ताल्लुक, रिश्ता जोड़ने के लिए अपना ईमान छोड़ के किसी और मजहब में चले जाते हैं, कोई और ईमान अपना लेते हैं, तो ये नफसानी ख्वाहिशें, ये सेंसुअल डिजायर्स हैं, ये फिजिकल डिजायर्स हैं, ये जिस्मानी ख्वाहिशें हैं। अगर इसे हवस कहा जाए तो गलत ना होगा। अपनी जिस्मानी हवस पूरी करने के लिए लोग ईमान से गुमराह हो जाते हैं, ईमान खतरे में पड़ जाता है। सो ख्याल रखिए, आपकी जिस्मानी ख्वाहिश, आपकी नफसानी ख्वाहिश कहीं आपको ईमान से महरूम ना कर दे, ठोकरें ईमान के लिए नुकसानदेह हैं। एक ईमानदार को दूसरे ईमानदार की जिंदगी से गलत नमूना मिले, गलत सबक मिले, तो ये ठोकर है। जो ईमानदार होने का दावा करते हैं लेकिन उनके रवैये, उनका चाल चलन, उनके काम देखकर दूसरे ईमानदारों को ठेस लगे, उन्हें तकलीफ पहुंचे, तो ये ठोकर है। रोमियो बाब नंबर 14 है, ये नहीं ठोकरों की बाबत लिखा हुआ है। कोई किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, और इंजील में लिखा हुआ है कि जो ठोकर का बायस बनता है उसके लिए बेहतर है कि बड़ी चक्की का पार्ट उसके गले में डालकर उसे समुंदर में फेंक दिया जाए। ये सजा है ठोकर खिलाने वाले की। एहतियात करें, ना खुद ठोकर खाएं किसी से, ना किसी के लिए ठोकर का बायस बने, क्योंकि ठोकरें ईमान के लिए नुकसानदेह हैं, बर्बाद कर देती हैं ईमान। कमजोर ईमान वाला हमारी हरकतें, हमारे काम, हमारी बातें, हमारे रवैये देख सुनकर ईमान छोड़ सकता है। रूहानी ठोकरें, जिस्मानी ठोकरें भी, जब हमें खानदानों में कबूल नहीं किया जाता, जब हमें रिश्तों में कबूल नहीं किया जाता, जब हमें समाज में कबूल नहीं किया जाता, जब हमें कलीसिया में कबूल नहीं किया जाता, हमारी कमजोरियों को बुनियाद बनाकर हमें दूर फेंक दिया जाता, हमारी इस्लाह नहीं की जाती, हमें सुधरने का मौका नहीं दिया जाता, हमारी तरबियत नहीं की जाती, तो हमें ठोकर मार के फेंक दिया जाता है कि तुम आज से फारिग हो, और फिर वो लोग ईमान छोड़ देते हैं और गुमराह बरगश्ता ईमान से दूर होकर फिर वो लोग शायद किसी और ईमान में भी जा सकते हैं। तो ठोकरें ईमान के लिए नुकसानदेह हैं। जिम्मेदारियों से गफलत बे ईमान से बदतर बना देती है। तिमोथियुस के नाम पहला खत 5वां बाब है और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगीरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बे ईमान से बदतर है। यह खास तौर पर खादमों के हवाले से लिखा है कि जो खिदमत में आते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाते हैं, वो अपने घरानों की फिक्र करें। जो अपने खानदान की फिक्र नहीं करता, उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, उनकी खबरगीरी नहीं करता, एज अ फैमिली मेंबर अपना रोल प्ले नहीं करता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता, वो ईमान का मुनकर है, इनकार कर चुका है वो ईमान का और बेईमान से बदतर हो चुका है वो। ईमान खत्म हो गया उसका और बेईमानों से भी बुरा हो गया वो। तो ख्याल रखें इस चीज का कि हम जब जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाते हैं, जब हम अपने ऊपर आयद जिम्मेदारियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर करते हैं, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते, तो ना सिर्फ ईमान का इनकार करने वाले हैं बल्कि बे ईमानों से बुरे हो जाते हैं, और यह बहुत खतरनाक बात है। अब एक याद रखने की बात है, यहां लोग कहते होंगे कि जी अगर हम सवाल करेंगे, हम तहकीक करेंगे, हम सोचेंगे ईमान के बारे में, खुदा के बारे में, मसीह के बारे में, रूहुल कुद्स के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में, तो लोग हमें समझेंगे कि हम बे ईमान हैं। सवाल या तहकीक करना खिलाफ ईमान नहीं है। क्वेश्चनिंग और इंक्वायरिंग इज नॉट अगेंस्ट फेथ। हम हक रखते हैं सवाल करने का, हम हक रखते हैं तहकीक करने का कि यह ईमान कैसे है, क्यों है, इसकी बुनियाद क्या है। हम हक रखते हैं सवाल करने का। हमारा खुदा सवाल करने वालों को नापसंद नहीं करता, वो इजाजत देता है सवाल कर, वो जवाब देता है क्योंकि वो अलीम कुल है, वो सब कुछ जानता है, ही इज ऑल नोइंग गॉड। कोई सवाल उसके लिए मुश्किल नहीं, और इंसानी जहन में कभी कोई ऐसा सवाल नहीं उठा जिसे खुदा ना जानता हो। इसलिए हमारा खुदा सवाल से, तहकीक से ना घबराता है, ना वो इसे रद्द करता है। सवाल हो आपके, आप तहकीक करना चाहें, तो ये खिलाफ ईमान नहीं है, इससे ईमान को खतरा नहीं है। तहकीक करें, सवाल करें, खोज लगाएं, रिसर्च करें, इंक्वायरी करें, क्वेश्चन करें, ईमान में बढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद सवाल किया सलीब पे लटके हुए। मैंने एक मिसाल सिर्फ लिखी है, इलोही इलोही लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सवाल है यीशु मसीह की जुबान से। अगर सवाल करना गलत होता तो यीशु कभी सवाल ना करता, क्योंकि यीशु सब बातों में कामिल है। उसकी जुबान में खराबी ना थी, उसके किरदार में खोट ना था, उसकी शख्सियत में किसी तरह का कोई सुकम ना था, कोई गुनाह, कोई गलती, कोई खोट यीशु में नहीं है। सवाल या तहकीक करना जायज है, आप कीजिए अपने ईमान पे, अपने बारे में खोज लगाइए, आजमाइए, एग्जामिन कीजिए, इंक्वायर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, तहकीक कीजिए, खतरों को जानते हुए तहकीक कीजिए, सवाल कीजिए। ये मददगार होंगे ईमान के बारे में ज्यादा बेहतर तौर से सीखने में। अब हमने जान लिया कि खतरात कहां से हैं, किन किन बातों से खतरा है, कौन कौन से खतरात दरपेश हैं ईमान को। अब सवाल ये बनता है कि ईमान कैसे महफूज रखा जा सकता है. हाउ द फेथ कैन बी गार्डेड. खुदा का कलाम इस बारे में हमारी रहनुमाई करता है, हम अगर ईमान में मजबूत हो जाएं तो हमारे ईमान को कोई खतरा नहीं हो सकता. खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील भी दी थी दो घर बनाने वालों की, एक ने रेत पे बनाया और एक ने चट्टान पे बनाया. आंधियां आई, जोर से बारिश हुई, पानी टकराया, लेकिन जो घर चट्टान पे मजबूती से बना था उसे कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बारिश, कोई पानी हिला ना सका. ईमान जो मजबूत होगा उसे कोई खतरा नहीं, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता, उसे कोई तबाह नहीं कर सकता. अगर हम ईमान में मजबूत हो जाएं, दानियेल के दोस्तों की मिसाल बार बार आएगी क्योंकि उस वाक्य में बड़ी खूबसूरत बात है. बादशाह को कहते हैं कि पहली बात यह है कि हम इस मामले में तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते, दूसरी बात यह कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग की भट्टी से, तेरे हाथ से, तेरे जुल्म से छुड़ाने की ताकत रखता है और वो हमें छुड़ाएगा, और तीसरी बात यह है कि अगर वो हमें ना भी छुड़ाए तो भी हम उसके बेवफा नहीं होंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम खुदा से मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम खुदा पर ईमान रखना नहीं छोड़ेंगे, हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, हम अपने जिंदा खुदा से लिपटे रहेंगे. ईमान में मजबूत हो गए. कुलुसियों पहला बाब और 23वीं आयत, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो. और पत्रस पहले खत में 5वें बाब में 8वीं और 9वीं आयत में यूं लिखते हैं, तुम ईमान में मजबूत होकर और यह जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं. हम ईमान में मजबूत हों तो खतरा चाहे कोई भी हो हमें कोई परवाह नहीं. आंधियां आए, तूफान आए, हमले हो, आजमाइशें आए, कोई भी काम हमारे खिलाफ हो जाए हमें परवाह नहीं होगी क्योंकि हमारा ईमान पुख्ता है, हम कायम हैं, हम मजबूत हैं. सो हल यह है खतरों से बचने के लिए कि हम ईमान मजबूत कर लें. हम सारे चोरों को रोक नहीं सकते लेकिन हम अपना घर महफूज रख सकते हैं कि कोई चोर उसे तोड़कर अंदर ना आने पाए, कोई चोर दरवाजा तोड़कर ना आए, कोई खिड़की तोड़कर ना आए, कोई दीवार फलांग कर ना आ सके, कोई दीवार तोड़कर ना आ सके. हम ऐसा मजबूत घर बनाएं कि जिसमें कोई चोर दाखिल ना हो सके. ये हमारे बस में है, हम अपना ईमान मजबूत करें तो कोई खतरा नुकसान नहीं दे सकेगा. ईमान खुदा के सुपुर्द कर दें. लोगों को घरों में खतरा होता है कि हमारे घर इतने महफूज नहीं, तो वो अपनी कीमती चीजें बैंक्स में जमा करवा देते हैं, अपने रुपए पैसे हम बैंक में रखवाते हैं, जेवरात कई लोग बैंक में लॉकर में रखवा देते हैं या अपने कीमती कागजात बैंक्स में रखवा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बैंक्स में इतनी जल्दी हमारा सामान चोरी नहीं होगा और अगर कुछ होगा भी तो बैंक जिम्मेदार होगा हमारे सामान का, हमारा कुछ नहीं जाएगा, वो बैंक जिम्मेदार होगा हमारे सामान के नुकसान पूरा करने का. अगर हम अपना ईमान खुदा के सुपुर्द कर दें, खुदा के हाथों में दे दें, दुआ में अपना आप खुदा के हजूर पेश कर दें कि ऐ खुदा मैं अपना आप, अपना ईमान, अपना अकीदा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो फिर खतरे जाने और खुदा जाने. जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो. जब हम अपना आप, अपने हालात, अपनी सारी बातें, अपना ईमान खुदा के हजूर दुआ में पेश कर देंगे, हम दुआ में लग जाएंगे, तो फिर हमारे ईमान को कोई खतरा नहीं है. हां कभी खतरा हो भी तो उस आदमी की तरह जिसका बच्चा ठीक नहीं था मिर्गी का मरीज था, यस्सु से मुलाकात हुई और यस्सु ने उसे कहा, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसने कहा, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर, मैं अपना एतकाद तेरे हाथ में देता हूं, मेरे एतकाद की जो खामियां कमजोरियां कमियां हैं वो तू ठीक कर दे। और लुका की इंजील का 22वां बाब 31वीं और 32वीं आयात, शमाउन शमाउन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। जब हमारा ईमान खुदावन यीशु मसीह ने महफूज कर देना है कि हमारा ईमान जाता ना रहे, तो खुदा हमारी जिंदगी में आने वाली कमजोरियों के बावजूद, आजमाइशों के बावजूद, हमारे गिर पड़ने के बावजूद हमारा ईमान महफूज रखेगा, वो हमें फिर कायम कर देगा। जब खुदा हमारे ईमान का मुहाफिज बन जाता है तो वो हमें इस काबिल कर देता है कि हम आजमाइशों और मुसीबतों और गिरावट से गुजरने के बावजूद दूसरों को मजबूत करने का वसीला बन सकते हैं। सो अपना ईमान खुदा के सुपुर्द करें कि खुदा तू हिफाजत कर हमारे ईमान की, खुदा के हथियार बांध लें, खुदा की हिफाजत में दे दे ईमान। खुदा अपने हथियार दे देता है, इफिसियों बाब नंबर 6 में उनकी तफसील लिखी है, हम हर एक दुश्मन का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे जब हम खुदा के हथियार बांध लेंगे। खुदावंद के हथियारों की बाबत हम कलीसिया में सीख चुके हैं, और जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए मैं गुजारिश कर दूं कि YouTube पे खुदावंद के हथियारों की बाबत तालीम मौजूद है वीडियोस की सूरत में, जो सीखना चाहें वो ज़रूर उनसे इस्तफादा करें। हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए खुदा के हथियार बांध लें। खुदा के हथियारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इबलीस, शैतानी कुवतें, कोई भी बड़े से बड़ा ख्याल, कोई तालीम, कोई सोच, कोई ताकत, कोई बादशाह, कोई भी आलम फाजल, कोई भी नाम देने से वो खुदा के हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकता। और जब हमारी जिंदगी, हमारा ईमान खुदावंद के हथियारों में महफूज होता है, खुदावंद कोई नुकसान नहीं होने देता, हमें हमें फतह देता है और दुश्मन को जेर करता, उसे शिकस्त देता है। सच्ची तालीम और नसीहत पाते रहें और उस पर कायम रहें, यह बड़ा जरूरी है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से और कलाम सच्चाई से, सच्ची तालीम के साथ, मिलावट वाला नहीं, खोट वाला नहीं, आमेजिश वाला नहीं, झूठी तालीम में डूबा हुआ नहीं। शुगर कोटेड कैप्सूल्स आते हैं, अंदर बहुत कड़वी दवाई होती है और बाहर बहुत मीठी कोटिंग होती है, तो ये जो झूठी तालीम है ना, ये शुगर कोटेड पॉइजन है, ये जहर है जो हमारा ईमान तबाह कर देता है और हमें लगता बड़ा अच्छा है। सच्ची तालीम सुनते रहें, कोशिश करें जहां से सच्ची तालीम मिले वहां से सुने और नसीहत पाते रहें। अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, और वो रोकना टोकना खुदा के कलाम के मुताबिक है, तो उसे अपनाएं, गुस्सा ना करें, नसीहत कबूल करें। कोई आपको एडवाइस देता है उसे कबूल करें, करेक्ट करता है उसे कबूल करें और कायम रहें उस पर। यानी कि तालीम तो पाली लेकिन करनी अपने दिल की मर्जी, उस तालीम पाने का क्या फायदा। सच्ची तालीम और नसीहत पाते रहें, यह आपकी मदद करेगी कि आप ईमान में मजबूत रहो, आपका ईमान कायम रहे, आपका ईमान पुख्ता रहे, और कोई वार हो इस पर, कोई खतरा आए इसके पास, तो कोई नुकसान ना कर सके। सच्ची तालीम आपको इस काबिल बनाएगी कि आपका ईमान महफूज रहे। अच्छी नसीहत आपको इस काबिल बनाएगी कि आप ईमान से गुमराह ना हो सको, आप वो तालीम पाएं, आप वो नसीहत पाएं और उस पर कायम रहें, आपका ईमान महफूज रहेगा। खबरदार रहें, अटेंटिव रहना, होशियार रहना है, सो नहीं जाना, गाफिल नहीं होना। अपने ईमान की हिफाजत के लिए आपको होशियार रहना है, नुकसान पहुंचाने वालों से खबरदार रहना है, इबलीस के हथकंडों से खबरदार रहना है, झूठे उस्तादों से खबरदार रहना है, دوست بن کر دغا دینے والوں سے خبردار رہنا ہے، آزمائشیں آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں ان سے خبردار رہنا ہے، آپ کے ساتھ قسمیں وعدے کرنے والوں کی صورت میں آپ کا ایمان برباد کرنے والے دشمن آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے۔ لوکا کی انجیل کا 21واں باب ہے، 34ویں آیت سے 36ویں آیت تک، تم آفتوں اور مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، نقصان پہنچانے والے لوگوں اور قوتوں سے خبردار رہنا، جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا۔ اس یہاں جاگتے رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی سونا نہیں، ہاں بدنی نیند تو ہم نے لینی ہے، لیکن روحانی نیند نہیں آنی چاہیے ہمیں، ہماری روحیں جاگتی رہیں، ہمارے ذہن الرٹ رہیں، ہم خطروں کو بھانپ سکیں، یہ میرے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ اسی طرح اعمال کی کتاب کا 20واں باب ہے اور اس کی 28ویں آیت سے، خبردار رہنا، گلے کی حفاظت کرنا، یہ میرے لیے اور خدا کے تمام خادموں کے لیے ہے۔ ہم اپنے گلے میں شامل بھیڑوں کی روحوں کے ایمان کے لیے خبردار رہیں، سچی تعلیم دیتے رہیں اور جھوٹی تعلیم سے انہیں بچائیں، پھاڑنے والے بھیڑیوں سے انہیں بچائیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم سچی تعلیم دیتے رہیں گے، جب ہم انہیں اچھی خالص تعلیم دیتے رہیں گے، جب انہیں ایمان کے بارے میں بتاتے رہیں گے، خبردار کرتے رہیں گے، تو وہ محفوظ رہیں گے، اگر مان لیں گے تو۔ اور اگر کوئی اپنے استاد کی، پاسبان کی بات نہیں مانتا اور بیدار نہیں رہتا، فکر نہیں رکھتا، پرکھ نہیں کرتا، تو پھر اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ سو ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم خبردار رہیں، عام ایماندار بھی خبردار رہے اور کلیسیاؤں کے پاسبان اور استاد بھی خبردار رہیں کہ وہ اپنی کلیسیا کو ایسے پھاڑنے والوں سے، جھوٹی تعلیم دینے والوں سے، ان کا ایمان برباد کرنے والوں سے انہیں بچائیں، دشمن ابلیس کا مقابلہ کریں۔ یعقوب باب نمبر 4:7 آیت میں لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور پترس کے پہلے خط میں 5:8-9 آیت، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ مقابلہ کرو، تمہیں یہ خیال کرنا ہے کہ اگر میں اس سے ہار گیا، میں نے اس کا مقابلہ نہ کیا، تو میرے اور بہن بھائی ہیں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، یہ انہیں پھاڑ کھائے گا، مجھے اسے روکنا ہے۔ ہر کوئی، ہر ایک ایماندار اپنے ایمان کے بچاؤ کے لیے اور دوسروں کے ایمان کے بچاؤ کے لیے ابلیس کا مقابلہ کرے۔ اب ابلیس کا مقابلہ کیسے کریں؟ وہ بدن نہ رکھنے والی مخلوق ہے، لیکن وہ کسی صورت میں بھی ہم پہ حملہور ہو سکتے ہیں، وہ کسی رشتہ دار کی صورت میں، کسی دوست کی صورت میں، کسی استاد کی صورت میں بھی حملہور ہو سکتا ہے، وہ کوئی روپ دھار سکتا ہے، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں، ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے ہر ایک وار کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے؟ اپنا آپ خدا کے سپرد کر کے اور خدا کے ہتھیار پہن کر۔ خدا کے ہتھیاروں کے بغیر ہمیں ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اچھی کشتی لڑنی ہے، ایسا نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے جی بس مقابلے میں اتر گیا مار لو، صرف خانہ پوری نہیں کرنی کہ ٹھیک ہے جی کوشش تو بڑی کی، صرف آنیاں جانیاں نہیں دکھانیاں، بلکہ پوری طرح اچھی طرح کشتی لڑنی ہے۔ پولوس رسول تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اگر ہم اچھی کشتی نہیں لڑیں گے، اگر ہم ابلیس کے مقابلے میں پوری تیاری خدا کے ہتھیاروں کے ساتھ مضبوطی سے نہیں لڑیں گے، تو ابلیس ہمیں ہرا دے گا۔ ہم جیت سکتے ہیں ابلیس کے خلاف، ہم ابلیس کے مقابلے میں فتح پا سکتے ہیں، کیونکہ یسوع نے فتح پا لی ہے اور وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کے غلبہ دیتا ہے۔ صرف ہمیں میدان میں اترنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم کمزور ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ داؤد اور جاتی جولیت کا مقابلہ کیا بنتا تھا، لیکن داؤد ایمان کے ساتھ اترا کہ خداوند کے نام سے آتا ہوں، اس کو खत्म कर दूंगा, और करके दिखाया। हम भी खुदावन के नाम से मैदान में उतरे इबलीस के मुकाबले में, और इबलीस भाग जाएगा। खुदा का कलाम है, यह गलत नहीं है। जब भी आप इबलीस के मुकाबले में उतरेंगे, इबलीस भाग जाएगा। वो तब तक वार करता रहेगा जब तक आप कमजोर हो, आप डर रहे हो, आप शिकस्त कबूल कर रहे हो। जब आप जीतने की धुन में आ जाओगे कि यीशु के नाम में मैं तेरे मुकाबले में आता हूं खुदावंद के हथियार लेकर, तेरा मुझ पे कोई जोर नहीं चल सकता, इबलीस भाग जाता है। अच्छी कुश्ती लड़ दी है आपने, स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है झूठी तालीम के खिलाफ, झूठे उस्तादों के खिलाफ, आजमाइशों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो आपको बरगला कर अपने पीछे लगा लें और ईमान तबाह कर दें। ऐसे लोगों के खिलाफ आपने रूहानी जंग लड़नी है, स्पिरिचुअल वॉर। ये बदनी लड़ाई नहीं है बल्कि रूहानी लड़ाई है, जो अच्छी कुश्ती हमने लड़नी है। और इस कुश्ती में जाफिशानी करनी है, जान देने तक के लिए तैयार रहना है। फिलिप्पियों बाब नंबर 1 और आयत नंबर 27, और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जाफिशानी करते हो, जान देने तक तैयार रहते हो। हम ईमान को महफूज रखेंगे, भले मुझे अपने बदन की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा। यहूदा उसकी तीसरी आयत में, ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाफिशानी करो जो मुकदसों को एक ही बार सौंपा गया था। यह ईमान एक ही बार सौंपा गया था मुकदसों को, इसे महफूज रखना, इसे बचा लेना। इसे बचाने के लिए जान भी चली जाए तो चली जाए, बदन मर जाए तो मर जाए, ईमान नहीं जाना चाहिए। दानियल के दोस्तों की तरह, हननिया, मिसाइल और अजरिया की तरह, जिन्हें सदरक, मीसक, अब्दनजू कहते हैं, उन्होंने कहा बदन जल जाए तो जल जाए लेकिन खुदा से बेवफाई नहीं कर सकते, खुदा को छोड़ किसी और को सजदा नहीं कर सकते। जाफिशानी करें, बदन की परवाह ना करें लेकिन ईमान महफूज रखने की कोशिश करें कि मेरा ईमान तबाह ना होने पाए, मेरा नुकसान हो जाए तो हो जाए, मेरा ईमान नहीं जाना चाहिए। मुझे मेरे काम से फारग कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, मेरा सब कुछ छीन लिया जाए, मुझे मार दिया जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन मेरा ईमान कायम रहना चाहिए। इब्रानियों 11वां बाब और 33वीं आयत से, उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मغلوب किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर कयामत नसीब हो, बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। इतना दुख सहा उन्होंने, तकलीफें सही, मुसीबतें सही, लेकिन ईमान महफूज रखा और यीशु को तकते रहे और उसके पीछे चलते रहे। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुना रहा, वो किसी आजमाइश में गिरा नहीं, वो सब दुखों से गुजर गया। इबलीस ने उसे कहा मुझे सजदा कर दे, मैं सारी शान शौकत ये बादशाहते तुझे दे दूंगा, नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह के पास बड़े मौके थे अपने आप को बचा लेने के, कई तरीके थे मौत से बच जाने के, लेकिन वो یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ کلوسیوں باب نمبر 2:6-7 آئے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ یسوع کو جیسے قبول کیا ہے اسی کو تکتے رہنا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے، اسی میں خود کو محفوظ رکھنا ہے، جو تعلیم پائی اس پہ قائم رہنا ہے، ہم ایمان میں مضبوط رہیں گے، کوئی ہمارا ایمان چھیننے نہ پائے گا۔ جب یسوع کے پیچھے چلیں گے خطروں سے بھی گزریں گے، اندھیری راہوں سے بھی گزریں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا ایمان محفوظ اور قائم رہے گا۔